उसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के जरिए बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी होना एक मेल, इतना तो हम सभी जानते हैं कि एक मेल और फीमेल की मिलकर एक प्रेगनेंसी या एक बच्चा बनते हैं। औरत के शरीर में माहवारी के दिन से संबंधित एक अंडा बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है। जिस दिन औरत को माहवारी आती है उस दिन उस महीने का उसका वो प्रोसेस शुरू होता है और पहले 14 दिनों में उसकी अंडेदानी में एक अंडा छोटे से साइज से धीरे 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 14 दिन में एक बड़ा आकार ले लेता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि दूसरे दिन, माहवारी के दूसरे दिन अंडों का साइज इतना होता है और फिर 12 से 14 दिन में एक अंडा बढ़कर एक बड़ा साइज का हो जाता है। 12वें से 14वें दिन पे ये बड़ा अंडा अंडेदानी से फूटकर बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है फेलोपियन ट्यूब, जिसे कि आम भाषा में ट्यूब कहा जाता है, उसके एंड में ये अंडा कैच हो जाता है और ये अंडा इस ट्यूब में इस तरह से रोल हो रहा होता है। उस दौरान अगर किसी औरत का संबंध अपने हस्बैंड के साथ होता है और हस्बैंड का पानी, हस्बैंड का सीमेन उसके अंदर छूटता है, जिसके कि अंदर शुक्राणु होते हैं, वो शुक्राणु नीचे से भागते हुए औरत की बच्चेदानी के अंदर पूरा रास्ता ट्रैवल कर ट्यूब तक पहुंचते हैं। और ट्यूब एक ऐसी जगह है औरत के शरीर में जहां उसके अंदर बना अंडा और आदमी के पानी के अंदर जो शुक्राणु हैं वो इस ट्यूब तक पहुंचकर ट्यूब में वो अंडा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। उनके मिलने के बाद एक एम्ब्रियो बनता है जो कि 3rd से 5th दिन ट्यूब से रोल होकर वापस बच्चेदानी में आ जाता है और यहाँ अपनी जड़ पकड़ लेता है, जिसके कि 12 दिन के बाद अगर वो एम्ब्रियो जड़ पकड़ लेता है तो 12 दिन के बाद औरत को माहवारी नहीं आती, जिससे कि ये समझा जाता है कि उसके दिन ऊपर हो गए हैं और वो जब यूरिन टेस्ट करती है तो उसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है। इस विधि को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ सकते हैं कि IVF में हम क्या करते हैं या इस इलाज में क्या किया जाता है जिससे कि हस्बैंड एंड वाइफ या एक कपल को प्रेग्नेंट होने में मदद मिलती है। IVF, जिसका कि फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे कि आम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कह देते हैं, इसमें कुदरती तौर पर जैसे प्रेगनेंसी होती है उसी तरह, उसी तरीके को फॉलो किया जाता है। महीने के दूसरे दिन पे औरत को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उस महीने में उसकी अंडेदानी में एक से ज़्यादा अंडे बने। एक अंडा कुदरती तौर पर उसकी अंडेदानी में बन ही रहा है, पर IVF, जिस महीने में हमने IVF करना है उस महीने में हम औरत को लगातार 12 से 13 दिन कुछ इस तरह के इंजेक्शन देते हैं जिससे कि उस महीने उसके अंडेदानी एक से ज़्यादा, जैसे कि 10 से 12 अंडे बनाए। वैसे ही दूसरे दिन से वो इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं और 12-13 दिन में जब अंडों का साइज 18 से 20 मिलीमीटर का हो जाता है तो उन अंडों को, जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी में वो अंडे अंडेदानी से रिलीज हो जाते हैं, हम IVF में उन्हें रिलीज होने से पहले ही अल्ट्रासाउंड के जरिए देखते हुए उन अंडों को अंडेदानी से बाहर निकाल लेते हैं। अब जब ये अंडे दोनों अंडेदानियों से निकाल कर हमारे पास बाहर एक डिश में आ गए हैं तो उसी टाइम हस्बैंड को कहा जाता है कि वो अपने पानी का सैंपल हमें दे, उस पानी के सैंपल को वॉश करके हम उनको वाइफ के अंडों के साथ मिक्स करके इंक्यूबेटर में रख देते हैं, जिस इंक्यूबेटर में अंडे और शुक्राणु को वही वातावरण मिलता है जो कि औरत के अंदर ट्यूब में, उसके शरीर के अंदर ट्यूब में मिलना चाहिए। 48 टू 72 आवर्स के बाद अंडा और शुक्राणु आपस में फर्टिलाइज हो चुके होने चाहिए। फर्टिलाइजेशन का इवेंट यानी कि अंडा और शुक्राणु के आपस में फ्यूज होने का इवेंट चेक करने के लिए हम 48 टू 72 आवर्स के बाद उस डिश को इंक्यूबेटर से निकाल कर देखते हैं कि कितने अंडे और कितने शुक्राणुओं ने आपस में मिलकर आगे अंश बनाए हैं। जो अंश बनकर रेडी हो जाते हैं उनको फिर हम बच्चेदानी में नीचे से बहुत ही जेंटली, बहुत ही नाजुक तरीके से एक कैथेटर के जरिए यहाँ पर बच्चेदानी में रख देते हैं। उस टाइम पे हमारी बच्चेदानी ऑटोमेटिकली हॉर्मोन्स द्वारा, जैसे कि कुदरती साइकिल में, तैयार होती है उस अंश को अपनाने के लिए। अंश अब हमने सही समय पर उसको अपनी सही जगह पर डाल दिया और उसके अगले 14 दिनों के बाद हमें रिजल्ट मिलता है कि क्या उस अंश को जिसे हमें हमने बच्चेदानी में सही समय पर डाला, क्या उस वो आगे बढ़ता रहा और क्या उसने अपनी जड़ पकड़ ली बच्चेदानी के अंदर। और अगर ये इवेंट हो जाता है तो अगले 14 दिन में प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है। तो समराइज करते हुए मैं सिर्फ यही क्लियर करना चाहूँगी कि IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्योरली नेचुरल तरीके को सिमुलेट करता है। अगर हम किसी भी स्टेप में नेचुरल तरीके से थोड़ा सा भी हटते हैं या बॉडी में कुछ भी चीज़ नेचुरल ऑप्टिमल एनवायरनमेंट से हटकर होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होती। इसलिए IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी को बिल्कुल भी कोई आर्टिफिशियल प्रोसीजर नहीं समझना चाहिए। ये प्योरली एक नेचुरल प्रेगनेंसी के जैसे ही है। सिर्फ एक ही फर्क होता है कि इसमें औरत का अंडा और आदमी का शुक्राणु के जो मिलने की जगह है वो औरत के शरीर के अंदर ना होकर औरत के शरीर के बाहर IVF लैब में एक इंक्यूबेटर में होता है। पर अंडा भी औरत की बॉडी के अंदर ही बनाया जाता है और उसे रिट्रीव किया जाता है और अंश बनने का प्रोसेस भी प्योरली नेचुरल है। अंडे की अच्छी क्वालिटी, शुक्राणु के अच्छी क्वालिटी और फर्टिलाइजेशन का एक नेचुरल इवेंट प्रॉपरली हो तभी एक हेल्दी अंश या हेल्दी एम्ब्रियो बन पाता है जो कि आगे प्रेगनेंसी देने की जिसमें संभावना होती है। इसलिए मैं अपनी इस टॉक से सबसे पहले यही क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी कपल IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर अपने मन में कोई स्ट्रेस ना रखे या इस चीज़ को कोई बहुत मुश्किल या पेनफुल या एक बहुत मुश्किल विधि ना समझे। हाँ, उस इसमें खर्चा ज़रूर इन्वॉल्व होता है, उसके अलावा कपल को किसी भी तरह की मुश्किल या पेन का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए मेरी राय एज अ डॉक्टर, एज एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम सामने आती है जिसका हल IVF से ओवरकम हो सकता है या बहुत सालों से अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो यही मानकर कि किसी ना किसी कारण जो हमें चाहे दिखाई नहीं दे रहा, अंडा और शुक्राणु आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, हमें IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद जल्द से जल्द लेनी चाहिए क्योंकि इस विधि में हम एक्चुअली एग और स्पर्म को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिस जो कि प्रेगनेंसी होने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है और यही एक स्टेप है जो हम अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा आगे की कहानी बिल्कुल नेचर पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल समझकर इससे इसको अवॉइड करना बेवकूफ़ी है। इनफैक्ट राइट एज में इसकी मदद लेकर प्रेगनेंसी अचीव कर लेना ही समझदारी है। जिससे कि हमें अपने ही एग और अपने ही स्पर्म से टाइम पे अपनी राइट एज में हमें एक हेल्दी बेबी और मिलेगा और पेरेंटहुड का सुख हम राइट एज पे ले सकते हैं। थैंक यू।